सभी का स्वागत है। आज हम लोग भक्ति वृक्ष पुस्तक जो है इसका भाग हमारा जो पाठ दो है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला पॉइंट डिस्कशन पॉइंट है परिचय या आइस ब्रेकर। आप अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के बारे में क्या जानते हैं? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि इस संस्था जो स्कॉन है वो क्या कर रही है, ये व्यक्ति को जानना चाहिए और तभी वो स्कॉन में ठीक प्रकार से वो शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं स्कॉन ऐसी संस्था है जो अपना धन विदेश भेज रही है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि स्कॉन वास्तविक संस्था का जो धन है वो है शिक्षा, भगवत ज्ञान, और ये केवल विदेशी नहीं पूरे विश्व में इसका प्रचार कर रहे हैं। ये सत्य बात है कि धन भेज रही है, लेकिन कौन सा धन? भगवत ज्ञान, भागवत धर्म का धन ये पूरे विश्व में प्रचार कर रही है और ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो इसलिए इसको ये सोचना कि ये भारत की है या अमेरिका की है ये बहुत बड़ी दुराभावना है, क्योंकि इसका आधार ही है कि हम सब लोग शरीर नहीं हैं, हम लोग आत्मा हैं, और इस कारण से जो एक्सटर्नल ड्रेसेस हैं वो बस खाली ये भारतीय की और अमेरिका की या पाकिस्तानी की जो भी, तो बाह्य दृष्टि से है, बाह्य हमारा शरीर का आवरण है, लेकिन हम सभी लोग आत्मा हैं और इस कारण से आत्मा का ज्ञान सभी को प्राप्त होना चाहिए। ओके, इसको पढ़ेंगे। गौर सीमा प्रभु पढ़िए, इस्कॉन के पॉइंट्स को पढ़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, इधर से
क्वेश्चन से
आप उनको दीजिए, मदन मोहन प्रभु को दीजिए।
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने सन 1966 में जुलाई में की थी। इस्कॉन की संस्थापना निम्नलिखित कारणों के लिए की गई है। एक, भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम पर आधारित कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार।
ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट है इस्कॉन का कि जो भी प्रचार है वो किसी गुरु या किसी व्यक्ति के मतामत को प्रस्तुत नहीं कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी कारण से जब कोई इस्कॉन का कोई प्रवचन सुनता है तो उसको बहुत अलग लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान है ही नहीं लोगों को। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं, तो उनके बारे में प्रमाणिक ज्ञान आपको परंपरा में ही प्राप्त हो सकता है सही सही, और बाकी सब जगह अंदाज लगाएंगे। जैसे कि मैं छोटा सा उदाहरण दूं कि भगवान विष्णु कृष्ण के अवतार हैं या कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, मैं इस पर जाना बिल्कुल नहीं जा रहा आगे और नहीं जाऊँगा, लेकिन इस पॉइंट को समझने के लिए हमको परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो दोनों में से किसी के अवतार नहीं है। हम तो जीवात्मा हैं जो कि माया से बद्ध हैं, तो माया बद्ध जीव को अगर प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करना है भगवान के बारे में तो वो ज्ञान भगवान से सीधे आना चाहिए और उसकी चर्चा आगे की जाएगी। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी भक्त प्रचार कर रहे हैं वो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के आधार पर ही प्रचार करें। कभी भी हमें ये नहीं बोलना चाहिए इस्कॉन के भक्तों को, तो स्पेशली कि मैं ये सोचता हूँ, ऐसा मेरा मत है, यहाँ तक मेरा विचार है, ये सब का कोई मतलब नहीं है। प्रभुपाद जी समझाते थे जैसे कि पोस्टमैन तो है ही, और साथ साथ ये लॉयर्स का केस एग्जांपल दे रहे थे। लॉयर जो है जब कुछ बोलता है तो कोर्ट करता है, दफा 300 ये, दफा 300 ऐसे करके, ऐसे यानी कि मैं समझता हूँ, मेरा विचार है कि इन्हें फांसी दे देनी चाहिए, ये तो कोई माने नहीं होगा बात। और आप प्रायः लोग इस प्रकार की बातें बोलते हैं भगवान के बारे में कि हमारा सब मानना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका प्रमाणिक है क्योंकि भगवदगीता और श्रीमद् भागवतम के आधारित है। इसके ऊपर छोटा सा कथा भी है। छोटी सी बात यह है कि एक बार अमेरिका में कोई बैन लगा रहे थे, तो कोर्ट केस हो गया, तो कोर्ट केस में जो लॉयर थे हमारी तरफ से, प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें कोई लॉयर की जरूरत नहीं है, हमारी पुस्तकें आप प्रेजेंट कीजिए, सारी वो पुस्तकें पढ़ें और उसके बाद अपना जजमेंट दें। और उन्होंने थोड़ी सी पुस्तक पढ़ी और कहा नहीं, ये लोग प्रमाणिक हैं, और केस रद्द हो गया, एक ही दिन में रद्द हो गया, ये जो ब्रेन वॉशिंग का केस था। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कृष्ण भावना का प्रचार किन पुस्तकों पर आधारित है? भगवत गीता, भागवतम के परंपरा पे, ठीक है।
ख, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार संकीर्तन आंदोलन का प्रचार।
यस, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि भगवत गीता और भागवतम का सार है हरि नाम संकीर्तन। हम लोग फिलोसफी से एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे अनर्थ क्या है, कि अनर्थ जाते हैं हरि नाम के द्वारा, इसलिए दोनों चीजों को साथ में लेके चलना चाहिए, भगवत ज्ञान और भगवत नाम, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आगे चर्चा करेंगे, हम खाली पॉइंट्स बता रहे हैं। यस,
ग, मैगनीज किताबें,
मैगजीन
किताबें, पत्रिकाएं तथा अन्य लेखनों का प्रकाशन एवं वितरण।
बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रकाशन शब्द पे आप विचार करें तो आज मैं सुबह इस बात पे विचार कर रहा था जब किसी में बहुत सुंदर विचार आया कि ये जगत पूरी तरह अंधकारमय है। इस जगत में किसी को कुछ पता नहीं है कि जीवन का अस्तित्व क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, नहीं। तो जब व्यक्ति भगवान के ग्रंथों को पढ़ेगा, भगवान का ज्ञान को प्राप्त करेगा, तभी उसके जीवन में कोई प्रकाश आएगा। और इस कारण से इसे कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज है। सुना होगा आपने, तो युद्ध हम कर रहे हैं माया से और प्रेम कर रहे हैं भगवान से, और इसका लक्षण क्या, और दोनों ही प्रचार का सूचक है, या उल्टा बोलना चाहिए, प्रचार दोनों का ही सूचक है। अगर आप माया से युद्ध कर रहे हैं तो प्रचार कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों और वो लोगों को बचाना है, और भगवान से प्रेम करते हैं तो भी प्रचार कीजिए, क्योंकि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। तो दोनों ही कार्य के लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे आप YouTube का वीडियो बनाएं, चाहे आप सॉफ्टवेयर बनाएं कैसे कि हम उसको स्क्रीन एडिटिंग कर सकते हैं, पुस्तकों का प्रकाशन कीजिए, अलग अलग तरह से। और किस तरह से लोगों के डल ब्रेन में, प्रभुपाद जी का मुझे बात याद आ रहा था कि लोगों का ब्रेन बहुत डल है और ये भी नहीं समझ पाते कि शरीर आत्मा का भेद ये, तो कैसे इस बात को उसके मन में घुसाया जाए। और आप देख सकते हैं इसके लिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी मूर्तियों का निर्माण किया करते थे। उस जमाने में बहुत महंगा हुआ करता था, डायरोरमा होता था ना, जन्म मृत्यु का वो जो चक्र दिखाने वाला होता है इस प्रकार से। तो अलग अलग तरीके से जो प्रीचिंग है प्रभुपाद बोलते हैं वो स्टीरियोटिपिकल नहीं होती, अलग अलग तरह से होती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एक ही तरह से प्रचार होगा, लेकिन सिद्धांत क्या है, भगवत गीता भागवत पे आधारित है और हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार होना चाहिए। ठीक है,
तत्कालीन समय में विश्व भर में 600 से अधिक केंद्र स्थापित है, जिनमें से कुछ मंदिर, कुछ शिक्षा केंद्र और कुछ ग्रामीण समुदाय है। मंगलाचरण।
प्रभुपाद प्रणाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
अनुवाद। हे गुरुदेव, सरस्वती गोस्वामी के सेवक, आपको हमारा श्रद्धायुक्त प्रणाम है। आप भगवान श्री चैतन्य देव की शिक्षा का प्रचार उन पश्चिमी देशों में कर रहे हैं जो निर्विशेषवादी और शून्यवादी है।
एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आप नोट कर रहा हूं, सरस्वती गोस्वामी के सेवक, प्रभुपाद जी के गुरु जी का नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और आप देखिए उनके सेवक यानी श्रील प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज का उद्देश्य सेम है। मैं अभी नोटिस कर रहा हूं इस चीज को, क्या है उद्देश्य, निर्विशेषवाद और माया शून्यवाद खंडन और गौरवाणी का प्रचार। श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की व्यास पूजा में एक बार बोला था ना, एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट दाउ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलमिटी दाउ हैज रिमूव्ड, कि भगवान एक व्यक्ति हैं, चेतना युक्त व्यक्ति हैं, ये आपने प्रमाणित किया है, और मायावाद की जो महान विपदा है उसका आपने नाश किया है। तो ये सुन करके श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतना खुश हुए बोले कि आज से अभय बाबू, उस समय प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, कुछ भी लिखते हैं आप छापिए, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। और वो कह रहे थे कैसे, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने गुरु महाराज के हृदय की इच्छा को समझ पाने के लिए। ये बात मध्वाचार्य जी भी कोट करते हैं, जो व्यक्ति प्रचार करता है कि भगवान विष्णु और जीव दो अलग हैं, इसीलिए वो दो का ऐसे दो दिखाते थे, तो वो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। तो इस प्रकार का प्रचार जो है, प्रचार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्राय समाज में या तो ये धारणा है कि भगवान है ही नहीं, यानी कि भगवान चेतना युक्त व्यक्ति नहीं है, या फिर वो निराकार हैं, और अगर कुछ है भी तो फिर हम ही भगवान हैं, इस प्रकार का प्रचार। तो प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में हम उनके उद्देश्य को समझ रहे हैं। तो उद्देश्य क्या है, गौरवाणी का प्रचार, चैतन्य महाप्रभु का वाणी का प्रचार, और शून्य निर्विशेष शून्यवाद का खंडन, और निर्विशेष और शून्यवाद खंडन से अर्थ है मायावाद का खंडन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे कि मायावाद और शून्यवाद क्या होता है। ओके, चर्चा का विषय त्रिविध तापेन। सो दशरथ प्रभु पढ़ सकते हैं।
साधारण किसी भी,
नहीं नहीं ये हो चुका है, ये आप पढ़िए त्रिविध ताप में से।
इस भौतिक जगत के सारे जीव महामाया के वश में हैं, जिसका कार्य उन्हें त्रिविध तापों के अधीन रखना है। ये ताप है अधिदैविक क्लेश, देवताओं के द्वारा उत्पन्न किया गया क्लेश यथा सूखा, भूचाल तथा तूफान, अधिभौतिक क्लेश अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश यथा कीड़ों या शत्रुओं द्वारा उत्पन्न क्लेश तथा आध्यात्मिक क्लेश अपने शरीर तथा मन द्वारा उत्पन्न क्लेश यथा मानसिक तथा शारीरिक अस्थिरता।
थोड़ी चीजें एक ध्यान रखने वाली बात है कि ये चैप्टर क्यों दिया गया है शुरुआत में, सीधे आत्मा के बारे में क्यों नहीं समझा रहे। जब कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास जाता है और पहली बात तो डॉक्टर के पास क्यों जाता है, बस सोच के उत्तर दीजिएगा। ओके,
जब उसे लगता है कि मैं बीमार हूं।
वेरी नाइस, बस यही उत्तर हम सुनना चाह रहे थे। जब उसको लगता है कि वो बीमार है, जब आपको लगेगा कि आप बीमार हो तो और परेशान हो तो डॉक्टर जैसा बोलेगा वैसा करोगे। लेकिन उसके बीच में भी एक चीज होगी, डॉक्टर पहले डायग्नोस करेगा आपको, ये सब बीमारी है ना, हाँ ये सब तो है, अच्छा ये सिम्टम है ना, हाँ ये सब तो है, तो फिर आपका डॉक्टर पे श्रद्धा आएगी, पॉइंट नंबर वन। और उसके बाद आप डॉक्टर की दवा लेने पे श्रद्धा रखोगे, दवा के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। पहला स्टेप, मैं बीमार हूं। दूसरा स्टेप, उन्हें डायग्नोसिस ठीक किया। और तीसरा स्टेप, मुझे दवा लेनी है। इन दो स्टेप्स की वजह से मुझे श्रद्धा आ गई, अब मैं तीसरा स्टेप जो नेक्स्ट लेवल ऑफ फेथ का, मैं दवा लूंगा। अब दवा के बारे में मुझे कभी पता नहीं होता, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे वो हरे कृष्ण मंत्र हो। अब दिक्कत ये है कि अगर ये व्यक्ति ना माने कि मैं बीमार हूं तब बहुत दिक्कत है। तो इस जगत में आप लोगों को प्रचार कीजिए तो लोग क्या बोलते हैं, हम दोबारा जन्म लेंगे तो क्या दिक्कत होगी, बोलते हैं ना। तो ये सारा चैप्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि व्यक्ति ये समझे कि हम लोग इस जगत में कष्ट भोग रहे हैं। अब व्यक्ति सोचेगा, अब इसमें आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि बीमारी का डायग्नोसिस भी बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि आप बीमार हो या हम बीमार हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तब व्यक्ति कहेगा कि अच्छा 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 ठीक है, हम लोग ताप से दुखी हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है। और जब व्यक्ति विचार करेगा कि मेरी कोई भी भौतिक योग्यता इन तापों को नहीं काट सकती, तब उसके पास, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, उस शास्त्रों पर विश्वास करके भगवान की भक्ति करेगा। समझ में आ रहा है? आप बहुत सारी दवा ट्राई करो, जब कुछ नहीं होता तो फिर आप एक सिंपल से होम्योपैथिक दवा भी ट्राई करेंगे, कह रहे भाई ये चलो कुछ भी काम नहीं कर रहा, ये काम करेगा। तो बुद्धि का से निर्णय करके देखो भाई, मैं आगे जो चर्चा होंगी, भूचाल वगैरह जो भी हो रहा है, आगे चर्चा होगी कि ताप है, उनको मैं अपनी शक्ति से नहीं काट सकता। तो कौन कौन से ताप है देख लीजिएगा। आदि दैविक क्लेश का अर्थ होता है जो देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं। इस सब इनमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे सुख और दुख हम अपने मन और शरीर के द्वारा अनुभव करते हैं। तो अंतर क्या देखा जा रहा है, अंतर हो रहा है आदि, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, देने वाला कौन है, उसके अनुसार इसका कैटेगराइजेशन किया गया है। तो आदि दैविक कष्ट का अर्थ हो गया भूचाल और जो भी है तूफान, लेकिन वो देवता के द्वारा दिया जा रहा है, देवताओं के द्वारा दिया जा रहा है, वो हमारे कर्मों के अनुसार। आदि भूत मतलब जीवात्माओं के द्वारा, जीव भूत होता है ना, भूत मतलब भूत नहीं, भूत मतलब जीवात्मा, अन्य जीवात्माओं के द्वारा। इसके संबंध में एक भक्त बोल रहे थे कि जितना कष्ट व्यक्ति को इंसानों से मिलता है उतना अन्य जीवात्माओं से नहीं मिलता है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कोई बहुत महान मंत्री भी क्यों ना हो और बंगाल में जाए या कहीं पर भी जाए जहां बहुत मच्छर हैं, तो मच्छर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि अरे भाई ये तो प्रधानमंत्री हैं या कुछ भी हैं, बड़े हैं, तो इन पे मैं नहीं काटूं। अगर गर्मी है सर्दी है तो ये व्यक्ति के पद और उसके धन की अपेक्षा नहीं करेगी, उसको बराबर से लगेगा। और जब बुखार आता है तब भी इस जगत की उपाधियां हमें हेल्प नहीं करती हैं। तो ये देख सकता है व्यक्ति, हर व्यक्ति देखेगा कि हर व्यक्ति इन तीन कष्टों से दुख प्राप्त कर रहा है। तो तीन कष्ट कौन से हैं, आदि दैविक जो यानी देवताओं के द्वारा शुरू होता है दिया जाता है, आदि भौतिक अन्य जीवात्माओं के द्वारा, और आध्यात्मिक मतलब हमारे शरीर मन से ही उत्पन्न हो रहा है बीमारी, हाँ बुखार इत्यादि। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। सो पढ़िए हाँ, आप कोई कह सकता है कि मैं नहीं भोग रहा हूं उसको, जिसको प्रभुपाद समझाएंगे यहाँ पे, कोई भी व्यक्ति ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि मैं दुख नहीं भोग रहा हूं।
इस संसार के प्राकृतिक विषय में फंसा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो घोषित कर सके कि मैं दुखी नहीं हूं, भोग नहीं रहा हूं। मैं किसी को भी यह कहने के लिए चुनौती देता हूं, इस प्रकार जगत में प्रत्येक व्यक्ति दुख भोग रहा है किसी न किसी ढंग से। यदि ऐसा नहीं है तो तो इतने प्रकार के औषधियों का विज्ञापन क्यों है?
वेरी नाइस, आपने आर्गुमेंट पकड़ा। अगर जब व्यक्ति बीमार नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर व्यक्ति भूखा नहीं है तो खाने का विज्ञापन क्या मतलब है? तो अगर बीमार नहीं है तो औषधियों का विज्ञापन क्यों है? और औषधियों को छोड़ दीजिए, हॉस्पिटल का विज्ञापन क्यों है? हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है, इससे पहले हमने कभी भी अपने, जब मैं छोटा था तब कभी नहीं देखा कि लखनऊ में हॉस्पिटलों का विज्ञापन होता। आजकल हॉस्पिटल का विज्ञापन ऐसा होता है जैसे कि नौकरी दे रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े विज्ञापन होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रगतिशील हो गए, इसका अर्थ क्या है, बीमारियां बढ़ गई। और एक और बात यह है कि जब आदमी जाता है अस्पतालों में तो इतना महंगा खर्चा होता है कि उसको देख करके और बीमार हो जाता है। एक बात महाराज जोक बता रहे थे, कह रहे थे कि यमलोक में जब जाता है व्यक्ति तो उसमें उसे भी दागते हैं, काटते हैं, लेकिन फ्री में करते और अस्पताल में जाता है व्यक्ति तो वहां भी इंजेक्शन लगते, ये सब लगता है, लेकिन उसके पैसे भी लगते हैं, और कब और दुख होता है कि नहीं, दुख भी भोगो और उसके बाद फिर वो पैसे भी दीजिए। हाँ जी,
दूरदर्शन टेलीविजन पर लोग सदैव शांति प्रदायक और दर्द विनाशक करने वाली औषधियों का विज्ञापन देते रहते हैं। अमेरिका और अन्य पश्चात देशों में ये इतनी विकसित हो गई है कि वहाँ दर्द मिटाने की दर्जनों गोलियां हैं। इससे सिद्ध होता है कि सर्वथा दुख अवश्य है, अर्थात किसी भी प्राकृतिक देह में उसे दुख भोगना ही पड़ेगा। प्रकृतिक जगत में तीन प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक।
आध्यात्मिक, अधिभौतिक, आदि दैविक। बोलिए।
देह और मन से उत्पन्न होने वाले दुखों को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। आज मेरे सिर में कुछ पीड़ा है, मेरे पीठ में कुछ दर्द है, मेरा मन शांत नहीं है, इन दुखों को आध्यात्मिक कहते हैं। अन्य प्रकार के भी दुख हैं जिनको अधिभौतिक कहते हैं। अधिभौतिक दुख हमें अन्य जीवों से प्राप्त होते हैं।
जैसे कि कोई व्यक्ति गाली दे दिया हमको, कोई व्यक्ति मारा, या फिर कोई आतंकवादी है। और देखिए ये बात आप लोग इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसा हमारा अनुभव है, इस समय हम लोग गौशाला में हैं, एक समय ऐसा आया था कि जाड़े का समय था और बहुत गायें चोरी हो रही थी, जो गौएं थी वो चोरी हो रही थी। तो हम लोग बहुत भयभीत थे कि यहाँ की गायें भी चोरी हो जाएंगी क्या, क्योंकि हम लोग के पास तो कोई हथियार नहीं था। हुआ नहीं कुछ, लेकिन डर तो था ना कि अन्य लोग आएंगे और चोरी कर ले जाएंगे, हमें पाप लगेगा, गायों का रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अन्य जीवात्माओं से बहुत कष्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आपके पास कोई सोना या कुछ ज्वेलरी कुछ भी है और आप ट्रेन में जा रहे हो तो लगातार आपको डर लगेगा कि कोई व्यक्ति चोरी कर ले। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो आदि भौतिक कष्ट है ये नहीं है। वो तो जब कोई व्यक्ति भक्तों के समाज में रहता है तब उसे इतना डर नहीं लगता, क्योंकि भक्त लोग अच्छे होते हैं। अदरवाइज लोग बहुत द्वेष से युक्त हैं। आप इधर आके बैठ सकते हैं। ठीक है।
अधिभौतिक दुख हमें अन्य जीवों से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त अधिदैविक दुख हैं। इनके ऊपर हम लोगों का कोई नियंत्रण नहीं है, ये देवताओं द्वारा या प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं। आकार,
इंटरेस्टिंग पॉइंट हमने नोटिस किया कि ये इन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। यानी कि कोई व्यक्ति एक मच्छर आकर के मेरा खून पी रहा है, व्यवहार में तो हम उसे हटाते हैं, हटाना भी चाहिए, लेकिन दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि वस्तुतः ये मेरे कर्म के अनुसार ही हो रहा है। आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक कष्ट मेरे कर्म के अनुसार ही मुझे दिए जा रहे हैं। बीमार पड़ते हैं, दवा लीजिए, ये व्यवहार है। दृष्टिकोण क्या है, ये मेरे कर्म के अनुसार ही हो रहा है। समझ में आ रहा है, व्यवहार और दृष्टिकोण में अंतर होना चाहिए। एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं जो आज की क्लास से सुना और आज की इस कक्षा से बहुत संबंधित है कि किस प्रकार से समाज में परिवर्तन आ सकता है। बहुत अच्छी बात थी, एक ही लाइन बहुत जबरदस्त है और वह है शिक्षा के द्वारा और आचरण के द्वारा, एजुकेशन और कल्चर। लोगों को जब एजुकेशन दी जाती है ब्राह्मणिकल कल्चर में तो लोग ब्राह्मणिकल कल्चर अपनाने लग जाते हैं, कैसे मुझे सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो इस प्रकार से एक एक व्यक्ति का परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। बहुत ही सुंदर बात लगी, क्योंकि और ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन के संग कल्चर होना ही चाहिए। आजकल के समाज में केवल एजुकेशन है, कल्चर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी कल्चर नहीं दिया जा रहा, इसलिए समाज में अधोगति हो रही। और पहले के समाज में एजुकेशन और कल्चर दोनों दिया जाता था, बल्कि एजुकेशन का उद्देश्य ही कल्चर देना होता था। अगर विचार करें तो, है ना। तो ये बहुत सुंदर बात हमें, और इस भक्ति वृक्ष के हमने सुबह सीखा, और भक्ति वृक्ष के माध्यम से व्यक्ति को देखेंगे धीरे धीरे। अब इसमें वैष्णव शिष्टाचार भी है और सारा कुछ फिलॉसफी भी है, सब कुछ है, कैसे अपने जीवन में अच्छे भक्त बन सके इस पर दिखाया जाता है। यस,
महामारी बाढ़ अत्यधिक गर्मी अत्यधिक,
धीरे धीरे बोलिए और स्पष्ट बोलिए।
महामारी बाढ़ अत्यधिक गर्मी अत्यधिक शीत भूकंप और आग लगना इत्यादि अतिदैविक दुख हैं। इतने पर भी हम लोग सोचते हैं कि इस प्राकृतिक जगत में हम सुखी हैं, जबकि इन क्लेशों के अतिरिक्त जन्म मृत्यु जरा और व्याधि तो है ही, तो फिर हम सुख कहाँ है,
फिर तो हमें सुख कहाँ है।
माया चक्र के अधीन होने के कारण हम सोचते हैं कि हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, हम सोच रहे हैं हमें जीवन का आनंद भोगना चाहिए, किंतु यह किस प्रकार का आनंद है।
और ये बात इतनी जल्दी हृदय में आत्मसात होती नहीं है। मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ज्ञान प्रकट नहीं होता, ये ज्ञान सत्वगुण की वृद्धि के द्वारा समझ में आता है कि मैं इस जगत में एक्चुअली दुख भोग रहा हूँ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम दुख तो भोग रहे हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करते कि हम दुख भोग रहे हैं। थोड़ा विचार कीजिएगा, सांस फूल रही है, खांसी आ रही है, तो हम इसके अभ्यस्त हो गए, और समाज में सबको आ रही है, इसलिए और भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा, दुख हो रहा है, दुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन पशु की तरह सोच रहे हैं, दुख तो मतलब ये तो नॉर्मल है जीवन का। और लोग मुझे बोलते हैं, कई बार बोला है, ये तो जीवन के संग नॉर्मल बात है दुख का अनुभव करना।
भागवतम में युधिष्ठिर महाराज से जब यह प्रश्न पूछते हैं तो कहते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो वो कहते हैं कि हर व्यक्ति मर रहा है पर वो सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा।
हर व्यक्ति देख रहा है कि अन्य लोग मर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मरूंगा और आज नहीं मरूंगा। अहने अहने भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेष स्थावरम् इच्छन्ति किम् आश्चर्य अतः परम। इसको मैं अपने जप में प्रयास करता लगाने का कि अगर ऐसा हुआ कि ये मेरा आखिरी मंत्र है तो बहुत सारी चीजें विजन से बाहर चली जाती हैं और फोकस कर पाते हैं। खैर, वो एक अलग पॉइंट है। अपने निजी जीवन या दूसरों के जीवन से त्रिविध ताप के अनुभव पर चर्चा करें तो चर्चा तो हम करते ही आए हैं, इस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे। चार और कष्ट हैं जिनके बारे में थोड़ा चर्चा किया जाएगा, जन्म वृद्धावस्था रोग एवं मृत्यु की यातनाएं। तो इन तीन तापों के साथ साथ चार चीजों का पैकेज और है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। अनंत कृष्ण प्रभु पढ़िए, वृद्धावस्था व रोग। एक ध्यान देंगे, जब भी आप लोग पढ़ें तो पंक्चुएट करते हुए थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए और स्पष्ट पढ़िए ताकि समझ में आए आसानी से।
वृद्धावस्था व रोग। वृद्धावस्था के कारण जीव का स्वरूप विकृत हो जाता है और वह अवश्यंभावी मृत्यु की तैयारी करने लगता है। इस प्रकार वह घर में पालतू कुत्ते सा जीवन बिताता है और उसे जो कुछ उपेक्षा में दे दिया जाए वही खा लेता है। अजीर्ण और मंदाग्नि जैसी अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होकर वह केवल कुछ कोर भोजन करता है। वह आसक्त
नहीं, वह अशक्त मतलब शक्तिहीन होने के कारण,
वह अशक्त होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता है। उस रुग्ण अवस्था में भीतर से वायु के दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आती है और उसकी ग्रंथियां सट जाती है। उसे सांस लेने में कठिनाइयां होती है और गले में के भीतर से घुर घुर की आवाज निकलती है।
प्रश्न एक, आपने वृद्धावस्था के और क्या क्या कष्ट देखे और झेले हैं, कृपया उनका विवरण दें। एक इंटरेस्टिंग है, पहला चीज ये है, मैं अपनी माँ से बात कर रहा था, तुमके घुटने में दर्द है, तो वो बोलने कुछ भी हो अब ये कम तो नहीं होने वाला है। बाकी मैंने इसे पहले भी समझाया था कि जब जवानी होती है और कुछ बीमारी होती है तो हम क्या सोचते हैं, अब ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वृद्धावस्था में आपको पता ये ठीक नहीं होगा, ये और खराब होने लग जाएगा, ये अंतर है। दूसरा चीज, जो चीजें हमारे लिए बड़ी सामान्य सी होती है ना, वो वृद्धावस्था में वो ही बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो जाता है। मैं देख रहा था एक वृद्ध भक्त को, बाथरूम जा रहे थे और उनका जो पांव था वो एक सीढ़ी का स्टेप को भी नहीं रख पा रहा था, उतना भी नहीं उठा पा रहे थे पांव को। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते ना कि इसमें ऐसा कैसे हो सकता है। एक बात सत्य है कि जितना व्यक्ति कम भोग करता है उसकी वृद्धावस्था उतनी अच्छी रहती है, और जितना हम शरीर से भी कार्य करते रहते हैं, जैसे चलते रहना, फिर थोड़ा एक्सरसाइज करना, चलना फिरना, तो और स्वस्थ जीवन जीना, नियमित जीवन जीना, तो आप देखेंगे कि वृद्धावस्था में ऐसी बुरी आदत हालत नहीं होती है जैसे आजकल में होती है। आजकल के जो हम लोग बाइक और कार जगह जगह यूज करते हैं, इससे हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया, और उसके लिए हम ये नहीं कह रहे कि यूज मत कीजिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी रहता है तो व्यक्ति के वृद्धावस्था में कम दिक्कत आती है, लेकिन ये नहीं बोला जा रहा है कि दिक्कत नहीं आती। अंततो गत्वा तो एकदम शरीर रुग्ण हो ही जाएगा। हमने देखा था, एक व्यक्ति के घर में गए और देखा व्यक्ति जो है वो वहीं बेड पर पड़ा हुआ है और थूक रहा है, बगल में पिगदान पड़ी हुई है, और उसके बावजूद व्यक्ति सोचता है कि मैं इस मकान का मालिक हूं। महाराज जी बता रहे थे कि क्या मालिकता है, खाली गाली दे सकता है अरे मेरे को खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। जब बहुत गाली देता है तो वो कुछ खाने के लिए दे देते हैं, तो सोचता है कि हाँ भाई मैंने कंट्रोल कर लिया, और उसके बाद एक समय आता है जब गाली देने की शक्ति भी नहीं रहती। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वृद्धावस्था एक बहुत बड़ा कष्ट है, और रोग तो अपने आप में कष्ट है। जैसे अभी देखिए मेरे को खांसी हो रही है, और आप कब देखेंगे भी कि रोग, बहुत बार हमें लगता है कि हम दवाई लेके ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं कि दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं होते, ये भी पता नहीं चलता कि दवा कौन सी लें। बहुत सारे रोग हैं, सामान्य सा रोग भी हो सकता है। तो ठीक है, क्या आधुनिक विज्ञान इन कष्टों को दूर करने में सफल हो सका है? अपना मत दीजिए। प्रभुपाद जी का मैं लेक्चर सुन रहा था, बहुत सुंदर बात बोल रहे थे कि आप लोग कुछ हद तक बीमारियों को इलाज दे सकते हो, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि बीमारी हो ही नहीं? वस्तुतः ऐसा तो कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि किसी को बीमारी ना हो। सर्वे सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया, ईमानदारी से डॉक्टर अगर ऐसा चाहने लग जाए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सारे डॉक्टर इस प्रकार के हैं, लेकिन पहले के जमाने में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि ब्राह्मण को आयुर्वेद का ज्ञान होता था, और वो भीख मांगने जाता था और देखता था कि अरे आप खांस रहे हो, ये दवा ले लो, थोड़ी बूटी ले लो, वहां से जाकर तोड़ लेना और आप ठीक हो जाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस मिल जाती थी। अब आजकल बहुत इंश्योरेंस इत्यादि सब कुछ कराना पड़ता है, तब जाकर के उसे कुछ बीमारी में इलाज होता है। तो हम देख रहे हैं कि बीमारी तो कष्ट है ही, और खर्चा उसके ऊपर से बहुत बड़ा कष्ट है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति वृद्ध नहीं होता, किसी तरह से वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं है, और थोड़ा बहुत बीमारी भी कम है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है मृत्यु। सो ललित मोहन प्रभु पढ़िए मृत्यु के बारे में।
मृत्यु इस प्रकार, वह मृत्यु के पास में बनकर लेट जाता है, विलाप करते मित्र और संबंधी उसे घेर लेते हैं, और वह उन सब से बोलने की इच्छा करते हुए भी बोल नहीं पाता, क्योंकि वह काल के बस में रहता है। वह अपने रोते हुए कुटुंबियों को देखता हुआ अत्यंत शोक में रहता है। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में, असहनीय पीड़ा में, चेतना रहित होकर मरता है। मृत्यु के समय उसको यमराज के दूत आए देखते हैं, जिनके नेत्र रोष से पूर्ण रहते हैं, और वह भय के मारे बलमूत्र त्याग देता है।
कृपया चर्चा करें कि मृत्यु के समय लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद अगर कुछ पॉइंट्स आपको रहता है तो आप बताइएगा। एक चीज़ तो ये कि जब व्यक्ति मरता है तो पूरे समाज के लिए वो एक व्यक्ति मरता है, एक इतने सारे लोगों में वो एक व्यक्ति कम हो गया, कोई बात नहीं हजारों लोग हैं, लेकिन उसके लिए पूरा समाज मर जाता है, एक तो ये चीज़। दूसरा, घबराहट ये भी होती है कि हम जाएंगे कहाँ। कितनी बार मैं उदाहरण को देता हूँ, कोई भक्त आते हैं और पूछते हैं प्रभु जी हमारे रहने की व्यवस्था कहाँ है, हमारे खाने की व्यवस्था कहाँ है, और एक बार नहीं कई कई बार लोग कन्फर्मेशन करते हैं, और दूसरी जगह जब जाते हैं तो कितने दिन के लिए जाते हैं, एक दिन दो दिन, फिर वापस आप जानते हैं कि वापस अपने घर पर आ जाएंगे, अपनी सिचुएशन में आ जाएंगे। एक बार शरीर त्याग देंगे तो दोबारा तो शरीर में नहीं आ सकते, चाहे आप राजकुमार हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, वैज्ञानिक हो, कितनी भी सफल पोजीशन पे हो, दोबारा तो उस पोजीशन पे नहीं आ सकते ना, आ सकते? अब हम कहां पे जाएंगे, ये भय बहुत जबरदस्त है। पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर तीन ये है कि व्यक्ति को जो भी उसने ग्रहण किया है सब छोड़ के जाना पड़ेगा यहां से। कितना मेहनत करके व्यक्ति धन अर्जित करता है, सब खत्म, सब छीन लिया जाएगा। मृत्यु सर्वहरश्चाहम। अब इसके जस्ट विपरीत देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वो तो पहले से जानते हैं कि जगत वो है नहीं, और वो तो इसीलिए भजन कर रहे हैं कि जगत में वापस नहीं आना पड़े। विचार कर रहे हैं आप, हम तो पहले से ही जगत में नहीं रहना चाहते, रह रहे हैं जब तक भगवान चाहते हैं कि जगत में रहो, अदरवाइज रहना नहीं चाहते, ठीक। दूसरा, भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो क्या कोई भय रहेगा, और भक्ति कर रहे हैं, हम यहां रहना नहीं चाहते, भगवान के धाम जाना चाहते हैं और साधन का आश्रय ले रहे हैं, भक्ति का आश्रय ले रहे हैं जिसके द्वारा हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। एकदम क्लियर है, अगर आप विचार कीजिए तो एकदम क्लियर है कौन सी बस में बैठेंगे, कौन सा टिकट कटाएंगे और कहां पहुंचेंगे। भाई जैसे मान लीजिए आपने आपने यहां से ट्रेन पकड़ी, पश्चिम एक्सप्रेस फॉर एग्जाम्पल, कहां जाती है, बॉम्बे जाती है, मैं तो कभी बैठा नहीं, बॉम्बे जाती है, तो आपने टिकट काट लिया पश्चिम एक्सप्रेस का, आपके पास टिकट है, टिकट है, ट्रेन पता है, ट्रेन का नंबर पता है, टाइम पता है, और डेस्टिनेशन जाना चाहते हैं अपनी इच्छा से। उसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र का तरीका पता है, वैकुंठ धाम पता है, और पता है भक्ति के प्रोसेस के द्वारा वहां पहुंचेंगे, तो भक्तों को कोई भय नहीं होता है, वस्तुतः कोई भय नहीं होता। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि वस्तु जो भक्त हैं वो मूर्ख हो जाएं, ट्रक के सामने आ जाएं, नहीं, भक्त मूर्ख नहीं होते हैं लेकिन भक्तों के हृदय, भक्त निर्भय होते हैं लेकिन भक्त मूर्ख नहीं होते। निर्भय क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। हाँ ओके, एक मिनट, भगवान कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे और मृत्यु के समय भगवान उनको अपने धाम लेके जाएंगे। यस,
अगर आपको सही ट्रेन पता है पर किसी कारण बस आपका पतन हो जाता है, फिर भी आप सही अगर ट्रेन पर बैठे हुए हो तो आप सही जगह पर बैठे हुए हैं। ट्रेन जो है वो बीच में ब्रेकअप होती है, और
एग्जाम्पल वो अलग है वो, ठीक है, मान लीजिए एक जन्म में नहीं पहुंच पाए तो अगली बार अगले जन्म में प्रयास करेंगे और हम अंततोगत पर पहुंच ही जाएंगे। ये
ट्रेन तो सही है ना, राइट ट्रेन है।
मतलब हम लोग मान लीजिए बीच में उतर गए, ये कहना चाहिए, पतन का अर्थ है कि मान लीजिए बीच के स्टेशन में उतर गए तो आपको स्टेशन से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, जब अगली बार ट्रेन आएगी उसके बाद उसमें बैठ जाइए, फिर आपको आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपको याद आ जाएगा। जैसे एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि आप पानी पीने के लिए नीचे उतरे, उतनी देर में ट्रेन निकल गई, समझ रहे हैं ना, पानी पीने के लिए नीचे उतरने का अर्थ है, या समोसे खाने के लिए नीचे उतर गए, ये ज्यादा अच्छा उदाहरण है, समोसे खाने के लिए नीचे उतर गए उतनी देर में, और समोसे खाने के लिए आप नीचे उतरे और समोसे खाने में इतने अब्सॉर्ब हो गए, ट्रेन घंटी बजा रही है, अरे भाई चलने का समय हो गया, चलने का समय हो गया, अरे नहीं समोसे खा रहा हूँ, समोसे खा रहा हूँ, इतने में ट्रेन चली गई। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझ कहने का अर्थ है कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर सहसा इंद्रिय तृप्ति में बहुत एब्जॉर्ब हो गए, निकल जाएगा, भक्ति करो, नहीं अभी बस कर रहा हूँ मैं, बस आ रहा हूँ, बस कर रहा हूँ, तो फिर ठीक है, मान लो इस जन्म में नहीं भी हो पाया तो अगले जन्म में फिर उसी स्टेशन पे रहोगे, ट्रेन आएगी, और ये बहुत अच्छा उदाहरण है, ट्रेन आएगी तो अब कम समय लगेगा क्योंकि आप अपने डेस्टिनेशन के पास में हैं,
जितना कवर किया ना आपने,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इस स्टेशन से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा आपको। और हाँ, एक और फायदा मिलेगा, जितने चाहो उतने समोसे खा सकते हो उस स्टेशन पे, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होगी, भौतिक भोग की प्राप्ति होगी, वो होती रहेगी, लेकिन ये बुद्धि भी भगवान बाद में देंगे, अब फिर से ट्रेन आई है, यानी फिर से भक्तों का संग मिलेगा अगले जन्म में और फिर आप चले जाएंगे। ये अच्छा उदाहरण, ये तो हमने कभी सोचा नहीं था, क्वाइट एग्जाम्पल, नाइस एग्जाम्पल, भक्तों के संग में हमेशा कुछ नया बात आता है, तो इसलिए भक्तों को मृत्यु से डर नहीं होता है, बल्कि वो मृत्यु की परीक्षा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन की प्रतीक्षा करता है। जन्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं, आज हम दोनों पैराग्राफ करके ही फिर रुकेंगे। आप पढ़ सकते हैं, अनंत कृष्ण पढ़िए।
जन्म, गर्भावास के समय जीव मल मूत्र वो कृमियों से भरे गर्भाशय में लेटा रहता है, उदर में भूखे कीड़े द्वारा शरीर भर भर में बारंबार काटे जाने पर शरीर को अपनी
शिशु को
अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है, वह भयावह
इस भयावह स्थिति के कारण
वह बारंबार अचेत होता रहता है। माता के द्वारा खाए गए कड़वे तीखे अत्यंत नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है जो असहनीय होती है। झिल्ली से लिपटा और बाहर की आंतों द्वारा ढका घिरा हुआ शिशु उदर में एक ओर पड़ा रहता है, उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा रहता है तथा उसकी कमर तथा गर्दन धनुषाकार में मुड़े रहते हैं। इस प्रकार शिशु पिंजरे के पक्षी के समान बिना हिले डुले पड़ा रहता है।
तो ये कठिनाइयां तो समझा दी गई हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग उदाहरण है जिससे आप बहुत अच्छा समझ सकते हैं। महाराज श्री से मैं सुन रहा था कि जब आपको मान लीजिए कोई कहे कि नहीं हम तो इस जगत में हमारा तो हैप्पी बर्थडे है, हम तो बहुत खुश हुए थे आए थे, तो उन एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए आपको किसी भोज में बुलाया जाए खाना खाने के लिए, और वो खाने से पहले जब आप एंटर करें तो खूब कस के पिटाई हो झंडे से, और उसके बाद गंदे नाले में डाल दिया जाए और फिर आपको बाहर निकाला जाए, स्वागत है आपका, हैप्पी बर्थडे, और आप भोज स्वीकार करें। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब आप समझ गए होंगे उदाहरण क्या है, उदाहरण करती है कि जब हम जन्म लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम देवता की तरह उतरते हैं और हाँ ठीक है अब आप लोगों के उद्धार के लिए मैं आया हूँ। नहीं, माँ के गर्भ में कितनी देर के लिए रहना पड़ता है, 9 महीने के लिए रहना पड़ता है, और एसेंशियली 4th महीने या 5वें महीने में ऐसे चेतना आ जाती है, उसके बाद व्यक्ति दुख का अनुभव करना चालू करता है और बोलता है कि भगवान मैंने अपने ही कर्मों की वजह से ये कष्ट की स्थिति में आया हूँ, अब मैं बाहर आऊँगा तो आपका भजन करूँगा। लेकिन बाहर आने के बाद वही परिवार वाले और पापा मम्मी बोल के हमें भुलवा देते हैं कि हमें हमारा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो ये चीज़ व्यक्ति को विचार करना चाहिए। और अगर आज सुबह मैं सोच रहा था इसके ऊपर कि मैं श्रील प्रभुपाद और इस कौन के संग में आ कैसे क्या, मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं आया कैसे, मेरा ये विचार था कि मैं आ कैसे गया और मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ, नहीं क्यों नहीं कर रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, कैसे कर पा रहा हूँ, इतना सुंदर इतना शुद्ध जीवन में कैसे जी पा रहा हूँ। हृदय में बहुत कृतज्ञता का अनुभव हो रहा था कि हमें तो कुछ भी पता नहीं था भगवान के बारे में, तो कुछ भक्तों ने कृपा किया तो हम कुछ कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें अन्य लोगों को भी बताना चाहिए इसके बारे में। वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन ये बहुत अद्भुत बात है ना। कभी विचार कीजिए कितने अज्ञान में हम थे और झन्न से रोशनी हो जाती है। इस पर उदाहरण आप समझिए, जैसे ये रूम बिल्कुल अंधकारमय हो, अभी अंधकारमय हो जाएगा और सुबह अब जब उठते हैं और जब लाइट जल जाती है तो पहला जब आंखें खोलते हो तो आप आश्चर्य महसूस करते हो, नहीं ये सब वस्तुएं हैं, कुछ सेकंड लगता है ना 1-2 सेकंड के बाद। ऐसे ही प्राय सभी लोग जीवन के अस्तित्व के बारे में बिल्कुल भूले बैठे हैं, जब इस ज्ञान को सुनेंगे तो उनकी आंखें धीरे धीरे खुलेंगी, अरे जीवन का उद्देश्य भी कुछ होना चाहिए और मैं दुख भोग रहा हूं तो बहुत आवश्यक है। क्योंकि ठीक है मृत्यु से भले आप ना डरे, लेकिन जन्म से सोचना चाहिए अगले जन्म में कि बहुत कष्ट होने वाला है। मृत्यु तो मान लीजिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए आएगी जो भी है, लेकिन उसमें भी अगर आप बेहोश कर दिए जाए तो मृत्यु चलो नहीं दर्द महसूस होगा, लेकिन जन्म का कष्ट में कोई बेहोश नहीं कर सकता, कोई ऑल आउट नहीं है कि आपके मच्छर वहां से निकाल सकें, कुछ भी नहीं, और चीख भी नहीं सकते। अगर यहां पे कोई व्याधि है दर्द है तो आदमी चीख करके थोड़ा सा शांति अनुभव करता है, चीख भी नहीं सकते। अस्पताल में जाओगे देखोगे कि भाई सारे लोग बीमार हैं तो कुछ राहत मिलेगी मैं भी बीमार नहीं हूं, गर्भ में तो अकेले ही पड़े हैं। तो इसलिए ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के लिए मानव जीवन मिला है। हम जन्म की अदृश्य कठिनाइयों को समझकर हमें क्या फायदा होगा, ये फायदा होगा कि हम लोग अब दोबारा जन्म ना लेने के लिए प्रयास करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास जाते हैं तो दशरथ जी क्या प्रश्न करते हैं कि आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि पे जो विजय प्राप्त करने का प्रयास है वो आपका सफल हो रहा है या नहीं, कुछ और प्रश्न नहीं करते, हाउ आर यू, आई एम फाइन, कुछ ये प्रश्न नहीं। ब्राह्मण से बड़ा जबरदस्त प्रश्न है कि क्या आप इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो कठिनाई है इसको पार करने के लिए आपका जो प्रयास है वो सही चल रहा है। एक पैराग्राफ और पढ़िए, 2 पैराग्राफ एसेंशियली। हम जन्म जरा व्याधि मृत्यु को नहीं रोक सकते,
यद्यपि हम आनंद प्राप्ति करना चाहते हैं परंतु कैसे इसकी प्राप्ति हो यह नहीं जानते, अर्थात भौतिक अवबद्धताओं जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे मुक्त हो यह नहीं ज्ञात है। लोग अस्पताल खोलते हैं, जैसे एक सिंधी महानुभाव ने अस्पताल खोलने के लिए 5-7 करोड़ रुपये दिए। वे सज्जन मुझसे मिलने आए, मैंने कहा आप कितना ही बड़ा अस्पताल क्यों ना खोले, आप मृत्यु को नहीं रोक सकते। यह संभव ही नहीं है, यह असंभव है। आप अपनी तरह से प्रयत्न करते हैं, अपनी वृद्धावस्था के कष्ट का निवारण चाहते हैं, किंतु यह अवस्था नहीं बदलती। तुम अस्पताल बनवा लो पर मृत्यु नहीं रोक सकते, यह संभव नहीं है। आप नई से नई वैज्ञानिक दवाओं का आविष्कार कीजिए पर आप रोग नहीं रोक पाते। कोई भी यह नहीं देख पा रहा है, कितने ही गर्भ निरोधक साधनों का आविष्कार हुआ पर जन्म नियंत्रण नहीं हो सका। इस प्रकार के जन्म पर नियंत्रण कहाँ है? आबादी बढ़ती जा रही है, आप ना तो जन्म ना ही मृत्यु ना बुढ़ापा को रोक सकते हैं।
इंटरेस्टिंग है, प्रभुपाद बोलते हैं जैसे कि मृत्यु नहीं रोक सकते, ऐसे ही आप जन्म को भी नहीं रोक सकते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को विचार करना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को केवल रोक सकता है अगर तो भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, जप के बारे में पढ़ लीजिए। जीवन की 4 जटिल समस्याओं से मुक्ति पाने का उपाय मैं पढ़ता हूं। भोजन की समस्या, आश्रय की समस्या, मैथुन की समस्या और भय। इस सब में से भय सबसे अधिक कष्टदायक है। हम अज्ञानतावश सदैव आने वाली समस्याओं के लिए भयभीत रहते हैं। यह भौतिक जीवन दुख और कष्ट से परिपूर्ण है, इसलिए हम सदैव भयभीत रहते हैं। यह भय इसलिए है क्योंकि हम सदैव भगवान की बहिरंगा शक्ति माया का संग में रहते हैं, परंतु भगवान के पवित्र नामों के उच्चारण मात्र से हमारे सारे भय नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 16 शब्दों का महामंत्र बताया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इन पवित्र ध्वनियों के उच्चारण से लाभ उठा सकते हैं और अपने सारे भय से मुक्त हो सकते हैं। जप करने के लिए किसी विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई दीक्षित है या नहीं, शाकाहारी है या मांसाहारी, गरीब है या धनी, शुद्ध है या शुद्ध, वह पवित्र नामों का जप कर सकता है। उदाहरण बहुत सीधा है, अग्नि को चाहे कोई ब्राह्मण छुए, चाहे कोई विद्वान, कोई भी व्यक्ति छुए, बच्चा छुए, वो अग्नि इसको जलाएगी। तो कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं हरि नाम करने से, बल्कि योग्य नाम करने से सारी योग्यता जाती है। तो आज का पाठ दोष यहाँ पे समाप्त हुआ। शिष्टाचार के बारे में अधिक चर्चा करने की जरूरत नहीं है, अगली बार हम पाठ 3 शुरू करेंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू ऑल वेरी मच।